ایران رادیو پادکست.
دوستو جو پوڈکاسٹ آپ سن رہے ہیں وہ ایران ریڈیو دوارا تیار کیا گیا ہے. اگر آپ دوسرے وشیوں پر بھی پوڈکاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ iranradio.ir/hi پر سن سکتے ہیں. اسرائیل بننے کے بعد پہلی جنگ 1948 میں ہوئی. اس جنگ میں زائنی آتنکوادی گٹوں نے فلسطینیوں کے خلاف اپنا رودر روپ دکھایا. فلسطین سے برٹین کے باہر نکلنے کی تیاری کے ساتھ ہی زائنی آتنکوادی گٹوں کی آتنکی گتویدھیاں اپنے چرم پر پہنچنے لگی تھیں. زائنی گٹوں نے پہلے سے ہی جنگ کی تیاری کر رکھی تھی، حالانکہ فلسطینی اس کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں فلسطینیوں کا کوئی نیتریتو نہیں تھا، جس کی وجہ سے زائنی آتنکی گٹوں کے خلاف ان کے پاس کوئی رڑنیتی بھی نہیں تھی. اس وشے پر زائنی اتہاسکار بینی موریس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اسرائیلی سینا کے خفیہ دستاویزوں کا کئی جگہ پر حوالہ دیا گیا ہے. اس کتاب کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ 1948 کے یدھ میں زائنیوں نے فلسطینیوں پر کرورتم اتیاچار کیے اور ان کا نرسنہار کیا. دوستو اسرائیل کا میٹاسٹیٹس پوڈکاسٹ کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے. میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام. انیس سو سینتالیس میں سنیکت راشٹر دوارا فلسطین کے وبھاجن کے پرستاو کے اعلان کے ساتھ ہی جاگرک راشٹر ایک بڑی اور خطرناک سازش کو ترنت بھانپ گئے اور پڑوسی دیشوں سے کئی سنگٹھنوں نے سوئچھا سے فلسطین کے بٹوارے کو روکنے کے لیے اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے. جیسے ہی زائنی شاسن کی استھاپنا کا اعلان کیا گیا، چھ عرب دیشوں جارڈن، عراق، لبنان، سیریا، سعودی عرب اور مصر نے زائنی شاسن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں اتار دیں. ٹیونیزیا، الجیریا، یمن، پاکستان اور سوڈان جیسے دیشوں کے سوئم سیویوں نے بھی سیلویشن آرمی کے روپ میں عرب سینا کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا. 10,000 سینکوں کے ساتھ مصر، 4,500 سینکوں کے ساتھ جارڈن، 2,500 سینکوں کے ساتھ عراق، لگ بھگ 2,000 سینکوں کے ساتھ سیریا، 3,100 سینکوں کے ساتھ سعودی عرب اور 450 سینکوں کے ساتھ لبنان زائنسٹ رجیم کے خلاف یدھ میں کود پڑے. سیلویشن آرمی اور ہولی جہاد آرمی کے روپ میں مسلم دیشوں سے آنے والے 3,500 سوئم سیوی لڑاکوں کو 7 بٹالینوں میں رکھا گیا تھا. اس کے مقابلے میں زائنیوں کے پاس پرشکشت 45,000 کی سینا تھی. جنگ کے آخر تک زائنی سینا سے سوئم سیویوں کے جڑنے سے یہ سنکھیا بڑھ کر 1,20,000 ہو گئی تھی. 29 مئی 1948 کو بن گورین نے سمست آتنکی گٹوں کے اسرائیلی سینا میں ولے کا آدیش جاری کر دیا. یہ ایک ایسی سینا تھی جس کے پاس تھل، جل اور وایو سینا کے روپ میں سبھی طرح کی سویدھائیں موجود تھیں. 16 مئی 1948 کو جارڈن کی سینا جارڈن ندی کو پار کر کے فلسطین میں داخل ہو جاتی ہے. اس دوران برٹش کمانڈروں کی کمان کی وجہ سے جارڈن کی سینا نے دوسری عرب سیناؤں کی تلنا میں زیادہ ویوستھت طریقے سے کام کیا. 28 مئی 1948 کو جارڈن کی سینا بیت المقدس میں پرویش کر گئی. اس سینا نے تل اویو سے 29 کلومیٹر کی دوری تک پرگتی کر لی تھی، لیکن پھر وہ وہیں رک گئی اور آگے نہیں بڑھی. اس کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ جارڈن کے کنگ ملک عبداللہ نے زائنسٹ ریجیم کے ساتھ ایک خفیہ سمجھوتا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے سینا آگے نہیں بڑھی تھی. اس کے علاوہ برٹین نے اپنے کمانڈروں کو واپس بلا لیا تاکہ جارڈن کی سینا کمزور پڑ جائے. اتر سے لبنان کی سینا فلسطین میں داخل ہو گئی اور اس نے الجلیل تک پرگتی کر لی، لیکن سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کے ہستکشیپ کرنے اور یدھ ویرام کا آدیش جاری کرنے کے بعد 10 جون کو اس نے اپنی پرگتی روک دی. सीरिया की सेना का क्या हुआ? सीरिया की सेना गोलान हाइट्स के इलाके से 15 मई को फिलिस्तीन में दाखिल हुई। मिस्र की सेना 29 मई 1948 को बीरशेबा और रफा से फिलिस्तीन में दाखिल हुई। अरब देशों के बीच मिस्र की सेना सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन व्यवस्थित नहीं होने की वजह से उससे जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं कर सकी। इसके बावजूद अरब सेनाओं ने ज़ायनी आतंकियों के कब्जे से कई शहरों को आज़ाद करवा लिया। अरब सेनाओं की प्रगति और सफलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप कर दिया और 10 जून 1948 को युद्ध विराम की घोषणा करते हुए जंग के दोनों पक्षों के लिए सैन्य मदद पर प्रतिबंध लगा दिया। अरब सेनाएं युद्ध विराम के भ्रम में थीं, लेकिन उसी समय ज़ायनिस रेजिम ने युद्ध विराम की सारी शर्तों को धता बताते हुए अपनी वायुसेना को नए हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। यूरोप से बड़ी संख्या में लोग लड़ने के लिए ज़ायनिस्ट रेजिम की सेना में आकर शामिल होने लगे। इस प्रकार ज़ायनी सेना ने अरब सेना के खिलाफ जंग जीत ली। सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के बावजूद ज़ायनियों ने अरब सेना पर व्यापक हमले शुरू कर दिए और उन इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया जिन्हें आज़ाद करा लिया गया था। 21 जुलाई को इस हालत में अरब सेना फिर से युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई, जिसका मतलब था मैदान जंग में हार स्वीकार करना। पश्चिम और पूर्व सोवियत संघ के समर्थन से ज़ायनी सेना ने 7 जुलाई 1949 को नक्ब में मिस्र की सेना की घेराबंदी कर ली और इस इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में ग्रीस के एक द्वीप में ज़ायनी शासन और अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान के बीच एक बैठक आयोजित हुई। 24 फरवरी से 20 जुलाई 1949 तक युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि इराक ने युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस बैठक में फिलिस्तीनियों और ज़ायनियों के बीच ग्रीन लाइन के नाम से सीमाओं का निर्धारण किया गया। 7 मार्च 1949 को सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र में इसराइल को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव पेश कर दिया और 11 मई को महासभा में वोटिंग के बाद इस शासन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर दी गई। इस तरह सुरक्षा परिषद की चाल और कुछ अरब शासकों की गद्दारी के कारण ये कलंक संयुक्त राष्ट्र में दर्ज हो गया। स्वेज नहर का युद्ध। 1948 के युद्धों में अरबों की हार के बाद फिलिस्तीनियों ने अपने क्षेत्रों को फिर से आज़ाद कराने के लिए 1949 से 1956 के बीच युद्ध जारी रखा। हालांकि फिलिस्तीन के विस्थापित लोगों ने 1948 के युद्ध की विभीषिका और उनकी ज़मीन हड़पने की गंभीरता की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझा था। फिलिस्तीनियों ने ज़ायनियों को सरकार के रूप में नहीं बल्कि आतंकियों के रूप में देखा। दरअसल फिलिस्तीनियों ने यह नहीं सोचा था कि आतंकवादियों से ज़मीन वापस लेना इतना कठिन और जटिल काम होगा, लेकिन वे 1956 तक ज़ायनी शासन के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सके। 1956 में इसराइल ने मिस्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मिस्र पर संयुक्त इसराइली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने हमला कर दिया। इसका कारण मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण था, जिसकी घोषणा 1956 में मिस्र के नेता जमाल अब्दुल नासिर ने की थी। इसके 2 साल पहले मिस्र की सेना ने ब्रिटेन पर नहर से अपना सैन्य वर्चस्व समाप्त करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन 1936 की एंग्लो मिस्र संधि के तहत इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाए हुए था। नील नदी पर असवान बांध के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के वादे की अनदेखी करने के लिए अमेरिका से नाराज नासिर ने सोवियत संघ के समर्थन से इस नहर से जहाज़ों के गुजरने पर टोल के भुगतान की आवश्यकता को देखते हुए स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का आदेश जारी कर दिया। अंग्रेज इस फैसले से आग बबूला हो गए और फ्रांसीसियों के समर्थन से, कि जिनका मानना था कि नासिर उपनिवेशित अल्जीरिया और इसराइल के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं, स्वेज नहर पर फिर से कब्जा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इसी क्रम में ज़ायनी सेना ने 29 अक्टूबर 1956 को मिस्र पर हमला कर दिया। उसके दो दिन बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं भी ज़ायनी सेना के साथ युद्ध में शामिल हो गई। शुरुआत में तीनों सेनाओं को एक साथ हमला करना था, लेकिन अज्ञात कारणों से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के हमले में देरी हुई। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं पोर्ट सईद और बंदर फुआद में पहुंची और स्वेज नहर के आसपास के क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने मिस्र पर पश्चिमी देशों और इसराइल के आक्रमण का विरोध किया और ज़ायनी फ्रांसीसी ब्रिटिश सेनाओं के मिस्र से नहीं हटने पर पश्चिमी यूरोप पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। अमेरिका ने सोवियत संघ की इस धमकी का फायदा उठाया और दुनिया भर में अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया। इसी के साथ उसने हमलावरों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने स्वेज नहर में युद्ध को तुरंत बंद नहीं किया तो अमरीकी सेनाएं मिस्र की सेना के समर्थन में युद्ध में प्रवेश कर जाएंगी। धमकियों ने अपना काम किया। दिसंबर तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं पीछे हट गईं। मार्च 1957 में इसराइल ने अंततः अमेरिका के दबाव के बाद स्वेज नहर का नियंत्रण मिस्र को सौंप दिया। इस संकट ने मिस्र के नेता नासिर को अरब और मिस्र के राष्ट्रवादी आंदोलनों में एक शक्तिशाली नेता में बदल दिया। का युद्ध अरबों के खिलाफ इसराइल ने 1967 में फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस जंग को 6 दिवसीय जंग के नाम से जाना जाता है। इसमें इसराइल ने अरब देशों के संभावित हमले को रोकने के लिए मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर हमला कर दिया। हालांकि इस युद्ध के बारे में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री मेनाखिम बेगिन ने अगस्त 1982 में न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, जून 1967 में सिनाई में जमाल अब्दुल नासिर की सैन्य ताकत से ये संकेत नहीं मिला कि मिस्र इसराइल पर हमला करने जा रहा है। हमें ईमानदार रहना चाहिए और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसराइल ने खुद इस युद्ध में उतरने और हमला करने की शुरुआत की थी और इसका फैसला किया था। इस प्रकार तीसरा अरब इसराइल युद्ध 5 जून 1967 को मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के हवाई अड्डों और सैन्य सुविधाओं पर ज़ायनी शासन के व्यापक हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ। युद्ध आमतौर पर सुबह के शुरुआती घंटों में या रात के अंधेरे में शुरू होते थे, लेकिन इसराइल ने 5 जून को सुबह लगभग 8:30 बजे अपने हवाई हमले शुरू किए जब मौसम पूरी तरह साफ था। हमले के लिए इस समय का चुनाव अपने आप में एक आश्चर्यजनक कारक था, क्योंकि मिस्रवासियों और उनके सहयोगियों को ज़ायनियों के हमले की शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा इसराइल दिन के उजाले में ज़मीन पर अपने लक्ष्यों को देखना और उन्हें सटीक रूप से नष्ट करना चाहता था। इस हमले में ज़ायनी शासन का लक्ष्य 3 अरब देशों की वायु सेनाओं को इस शासन के खिलाफ ज़मीनी कार्यवाही शुरू करने से पहले नष्ट करना था। परिणाम स्वरूप एक दिन में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के 340 युद्धक विमान उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों के भीतर मिस्र से गजा पट्टी और सिनाई रेगिस्तान, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलम और वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलान हाइट्स का नियंत्रण छीन लिया और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1967 के बाद 6 दिवसीय युद्ध के नतीजे में, कि जिसे अरब अल नक्सा यानी हार का दिन भी कहते हैं, 15,000 से 25,000 अरब सैनिक मारे गए और ये 5 से 10 जून तक चला। युद्ध के तीसरे ही दिन जब ज़ायनी शासन ने अपने मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव 242 पारित किया, लेकिन इसराइल ने इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज कर दिया और युद्ध जारी रखा। 10 जून 1967 को युद्ध विराम का आदेश जारी करने से पहले उसने स्वेज नहर के पूरे पूर्वी तट, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट, गोलान हाइट्स और सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। 11 जून को अरबों के सुझाव पर इसराइल के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार अरबों की हार के साथ ही ज़ायनी शासन के कब्जे वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले 10 लाख अरब इस शासन के सीधे नियंत्रण में आ गए। युद्ध विराम समझौते की समाप्ति के बाद ज़ायनी शासन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़कर पड़ोसी देशों में प्रवेश करने वाले फिलिस्तीनियों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद ये लोग मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। रमजान युद्ध। रमजान युद्ध इसराइलियों के बीच योम कीपुर या अक्टूबर युद्ध के नाम से मशहूर है। यह युद्ध रमजान की 19 तारीख को और अक्टूबर 1973 में शुरू हुआ था। इसे एक तरह से इसराइल और अरब देशों के बीच आखिरी युद्ध कहा जा सकता है। 6 दिवसीय युद्ध के बाद जारी रहने वाली झड़पों के नतीजे में 1973 में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। 6 अक्टूबर को यहूदियों के त्यौहार योम कीपुर के दिन मिस्र ने स्वेज नहर से और सीरिया ने गोलान हाइट से इसराइल पर हमला कर दिया। मिस्र की सेना स्वेज नहर से गुजरकर किसी खास रुकावट के बिना सीना डेजर्ट तक पहुंच गई। इसराइल की सेनाओं ने 3 दिन के बाद मोर्चा संभाला और मिस्र को आगे बढ़ने से रोकते हुए लड़ाई को बंद गली में पहुंचा दिया। सीरिया ने भी गोलान हाइट्स में कई रणनीतिक इलाकों को आज़ाद करा लिया, लेकिन 3 दिन बाद ही इसराइल ने उन पर फिर से कब्जा कर लिया और उसके बाद एक बड़ा हमला करके सीरिया के अंदर तक घुस गया। 1 हफ्ते की लड़ाई के बाद ही इसराइल के तोपखाने ने राजधानी दमिश्क के आसपास के इलाकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। 22 अक्टूबर को युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव विफल हो गए और दोनों पक्षों में से हर कोई दूसरे को पूर्व युद्ध विराम का उल्लंघनकर्ता बताने लगा। 2 दिन के बाद इसराइली सेना ने सभी मोर्चों पर अपनी स्थिति मजबूत बना ली और मिस्र की सेना का सिनाई और स्वेज शहर में घेराव कर लिया। 25 अक्टूबर तक दोनों पक्षों के समर्थकों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद चरम पर पहुंच गया। टकराव का दायरा बढ़ता देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर युद्ध विराम का अनुरोध किया, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जता दी। इस युद्ध ने दोनों पक्षों और मध्य पूर्व पर काफी गहरा और व्यापक असर डाला। अरबों को 1967 के युद्ध में सैन्य गठबंधन के बावजूद अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। इस बार शुरुआती सफलता के बावजूद हार उनका मुकद्दर बन गई। लगातार मिलने वाली हार ने अरबों का मनोबल तोड़ दिया। जंग के मैदान में जीत के बावजूद इसराइल भी इस हकीकत को समझ गया था कि अरबों पर उनकी सैन्य वरीयता हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। इसके बाद दोनों पक्षों ने तथाकथित शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला लिया, जिसके बाद 1978 में कैम्प डेविड समझौता हुआ, जिसके तहत सिनाई डेजर्ट मिस्र को वापस लौटा दिया गया और इसराइल के सबसे मजबूत दुश्मन मिस्र ने उसे मान्यता दे दी।